दिन भर 4 मई दिन गुरुवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आज हो रही है चर्चा भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की। अफगान कबायली नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार लगभग 20 साल बाद काबुल लौटे।
इनकी कोशिश ये है कि जो इनकी अपनी पार्टी है, जो मुख्तलिफ इसके फैक्शंस हैं, उनको मिलाकर ये एक बड़ी सियासी जमात बनाएं और अफगानिस्तान की सियासत में कोई अहम किरदार अदा करें।
मिग विमान की दुर्घटना में घायल एक पायलट ने अदालत से जीती लंबी लड़ाई, क्या था इसका मकसद?
मैं होप कर सकता हूँ कि अब जो मेरे आने वाली जनरेशन और जो फाइटर पायलट्स आएंगे उनके लिए सिर्फ उच्च क्वालिटी का स्टफ ही होगा।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था के तहत कई देशों ने भारत से मानवाधिकारों से जुड़े मामलों पर सवाल किए हैं, जिनके जवाब भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी दे रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के सदस्य देशों ने भारत से कहा है कि उसे महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए उपायों पर अमल करना चाहिए, शिक्षा पर खर्च होने वाली राशि को बढ़ाना चाहिए, साथ ही बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। फ्रांस में टीवी दर्शकों के एक सर्वेक्षण से संकेत मिला है कि उदारवादी इमैनुअल मैक्रों रविवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर के मतदान से पहले टेलीविजन पर हुई बहस में मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। उन्हें अपनी प्रतिद्वंद्वी नेशनल फ्रंट की मरीन लपेन पर भारी माना जा रहा है। 2.5 घंटे की बहस के दौरान दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। बहस के बाद BFM टीवी को दिए साक्षात्कार में मरीन लपेन ने कहा,
J'ai surtout décidé de lever le voile, ou de tenter de le faire, je crois, avec un certain succès, sur qui est M. Macron.
मैंने सबसे पहले हिजाब हटाने का फैसला किया और कुछ हद तक इसमें सफल भी रही। ये मिस्टर मैक्रों हैं कौन? कहां से आते हैं? ये किसके हितों की रक्षा कर रहे हैं? फ्रांस के लिए उनका नजरिया क्या है? वो पहले दौर में जीत गए, हो सकता है कि दूसरे दौर में भी आगे रहें, लेकिन इससे उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं चलता। ये थे फ्रांस में नेशनल फ्रंट की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदार मरीन लपेन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। उत्तरी चीन के एक बड़े हिस्से में धूल भरी आंधियां चली हैं, जिसकी वजह से कई शहरी इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों को घरों में ही रहने की चेतावनी दी गई है। चीन में इस मौसम में गोबी रेगिस्तान की ओर से धूल भरी आंधियां चलती हैं। रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए चीन की सरकार ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन धूल भरी आंधियां ये बताती हैं कि चीन में पर्यावरणीय संकट बना हुआ है। राजधानी बीजिंग में रहने वाले एक नागरिक का कहना है, ये बहुत तकलीफ देने वाला है। ये सर्दियों में होने वाली धुंध से भी बदतर है। ऐसा महसूस हो रहा है कि सांस के जरिए धूल आपके पेट में भर गई है। मुझे अपने घर के लोगों से कहना पड़ा कि आज घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर होगा। ये थे बीजिंग में एक स्थानीय व्यक्ति के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान में वरिष्ठ कबायली नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार 2 दशक तक भूमिगत रहने के बाद काबुल लौट आए हैं, जहां उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति अशरफ गनी की अगुवाई में हुए इस कार्यक्रम के दौरान हिकमतयार ने राष्ट्रगान के लिए खड़े होकर सम्मान प्रकट किया, जिसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में अधिकतर धार्मिक नेता और उनकी तरह विचार रखने वाले लोग राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना सही नहीं मानते, जिसे वो गीत संगीत की तरह समझते हैं। हिकमतयार का कहना है कि वो अभी सरकार में अपने लिए कोई भूमिका नहीं चाहते। अधिकारियों को उम्मीद है कि तालिबान हिकमतयार के उदाहरण का अनुसरण करेगा। रूस, तुर्की और ईरान ने सीरिया में 4 सेफ जोन बनाने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। रूस की ओर से बढ़ाए गए इस प्रस्ताव पर कजाखस्तान में हो रही शांति वार्ता के दूसरे दिन सहमति बनी। सीरियाई विपक्ष के प्रतिनिधि ये कहकर शांति वार्ता से उठकर चल दिए कि उन्हें ये योजना मंजूर नहीं है। इस योजना के तहत सीरिया और रूस के लड़ाकू विमान अपनी बमबारी रोक देंगे। BBC समाचार।
चार मई गुरुवार के दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक बैठक चल रही है, जिसमें कई देशों के मानवाधिकार रिकॉर्डों की समीक्षा हो रही है। आज बारी है भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की। भारत का एक प्रतिनिधिमंडल वहां अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है, जिसकी अगुवाई भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। बीबीसी हिंदी सेवा के डिजिटल संपादक राजेश प्रदर्शी ने जिनेवा की इस बैठक पर नजर रखी हुई है। स्टूडियो में इस वक्त वो हमारे साथ हैं। राजेश जी, क्या क्या कहा जा रहा है बैठक?
एक घंटे पहले ये शुरू हुई है देशों की बातचीत और सवाल पूछे जा रहे हैं। ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स इसको कहते हैं, जो कि हर 4 साल पर होता है। तो ये एक तरह से खुला मंच है, जिसमें सभी देश एक दूसरे के बारे में सवाल पूछते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, सुझाव देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसमें जो कॉमन थीम जो उभर कर आ रही है, जैसे कि इटली ने बहुत ज़ोरदार तरीके से ये मुद्दा उठाया कि भारत में मृत्यु दंड जो दिया जाता है उसको हटाया जाना चाहिए। इसी तरह से कई यूरोपीय देशों ने कहा है कि भारत में, ख़ासतौर पर आइसलैंड ने इस पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि भारत में जो धारा 377 के तहत समलैंगिकों को जो सज़ा दी जाती है या जो कानून है, उस कानून को हटाया जाना चाहिए, उसको उन्होंने रिपील करने की मांग की। और कई देश हैं जिन्होंने ये मांग उठाई है कि भारत में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सरकार को और ज़्यादा काम करना चाहिए। और सुझाव ये दिया गया है कि शादी के भीतर जो बलात्कार के मामले हैं उनको रोकने के लिए भी, वो भारत में अभी कानूनन जुर्म नहीं है, तो उसको कानूनन जुर्म घोषित किया जाए। इसके अलावा जो एक इटली की मांग है वो काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि भारत के कुछ राज्यों में धर्मांतरण को रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वो धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार है लोगों का, उसका हनन है। तो लोगों को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकें। स्पेन ने बहुत ज़ोर शोर से अपनी बात कही है। स्पेन का कहना है कि भारत में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वो एक गंभीर समस्या है, और ऑनर किलिंग की समस्या एक गंभीर समस्या है, जिसके बारे में भारत को कुछ करना चाहिए। और मोटे तौर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर उसने, स्पेन ने कई बातें कही हैं। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है, जिसके बिना ये पूरी चर्चा पूरी नहीं होगी, और पाकिस्तान ने भारत के बारे में सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत में, भारत प्रशासित कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल भारत को बंद करना चाहिए और वहाँ के लोगों को उनके अपने अधिकारों के लिए फैसला लेने की छूट होनी चाहिए। और उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा की भी बात की।
अजय जी, संक्षेप में बताएं, ये सारे देशों ने भारत के बारे में कहा है, भारत ने कुछ कहा है अभी तक?
भारत की ओर से अभी ये बारी बारी से चल रहा है। भारत की ओर से मुकुल रोहतगी, जैसा आपने कहा कि वो अंत में सफाई देंगे, और जो धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मामला है वो भी उठ रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि 2014-2015 के बीच भारत में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में 17% की वृद्धि हुई है।
तो अभी ये बैठक चल ही रही है और भारत का पक्ष अभी आना बाकी
है। जी, अभी 2.5 घंटे बाकी
हैं। जी, उस पर हम नजर रखे हुए हैं और अगली सभाएं शायद इसके बारे में और तफसील आ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश प्रदर्शी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अफगानिस्तान में 2 दशक पहले जारी गृह युद्ध के दौरान जो नाम सुनाई देते थे, उनमें एक नाम था गुलबुद्दीन हिकमतयार का। इस कबायली सरदार ने पहले रूसी सेना के खिलाफ लड़ाई की, फिर अमरीकी सैनिकों से भिड़ा और फिर तालिबान से भी संघर्ष किया। मगर 1996 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से वो भूमिगत हो गए। पिछले साल मौजूदा अफगान सरकार के साथ हुए एक समझौते के बाद आज गुलबुद्दीन हिकमतयार काबुल लौट आए हैं। पूरे ब्यौरे के साथ कुलदीप मिश्र।
अफगान कबायली नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार अफगान सरकार के साथ शांति समझौता करने के 8 महीने बाद काबुल लौट आए। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच उन्हें जलालाबाद से काफिले में काबुल लाया गया, जिसकी निगरानी अफगान सेना का एक हेलीकॉप्टर कर रहा था। हिकमतयार अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े चरमपंथी संगठन हिजबे इस्लामी के मुखिया हैं और उन पर हिंसा और अत्याचार समेत कई आरोप लगते रहे हैं। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हिकमतयार वहां के सबसे विवादित नेताओं में गिने जाते रहे हैं। करीब 20 साल पहले 1996 में तालिबान ने उन्हें काबुल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वे उन 7 सोवियत विरोधी गुटों के प्रमुखों में से एक थे, जिन्होंने 1980 के दशक में सोवियत आक्रमण के खिलाफ भारी संख्या में मुजाहिदीन लड़ाकों की अगुवाई की थी। वे 1990 के दशक में हुए खूनी गृहयुद्ध में अपनी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात रहे, जब उनका गुट काबुल पर कब्जे की लड़ाई में दूसरे मुजाहिदीन गुटों से लड़ बैठा। साल 1990 में हिकमतयार ने बीबीसी से बात की थी और पश्चिमी देशों पर धोखा देने का आरोप लगाया था।
Before Russian withdrawal and the presence of Russian troops in Afghanistan, Mujahideen were called as heroes, freedom fighters.
रूस की वापसी और अफगानिस्तान में रूसी सेना की मौजूदगी से पहले मुजाहिदीन नायक और आज़ादी के सिपाही कहलाते थे, लेकिन रूस की वापसी के तुरंत बाद उनका लहजा बदल गया और वे उन्हें आतंकवादी कहने लगे। गुलबुद्दीन हिकमतयार के शब्द। अफगान सरकार के साथ हुए समझौते के बाद हिकमतयार हिंसा छोड़ने और संविधान अपनाने को तैयार हो गए हैं। उनकी काबुल वापसी पर शहर के कुछ लोगों ने खुशी जाहिर की। काबुल शहर की तबाही के लिए हर नेता जिम्मेदार है, लेकिन अब वो अमन के लिए काबुल लौटे हैं और ये हमारे लिए अच्छी खबर है। अमन कायम हो सका तो पूरा मुल्क इससे खुश होगा। कुछ लोग मानते हैं कि हिकमतयार की वापसी से शांति स्थापना की दिशा में अफगानिस्तान एक कदम आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ के मुताबिक इससे सरकार के भीतर फूट पड़ने का खतरा भी बढ़ गया है।
गुलबुद्दीन हिकमतयार लौटे किस इरादे से हैं और इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये समझने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले पेशावर में अफगान मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ जई से बात की और सबसे पहले पूछा कि बीते दो दशकों से हिकमतयार कर क्या रहे थे।
हाँ, ये जो इतना लंबा अरसा है इसमें तो एक तो जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई की और तालिबान की हुकूमत को ख़त्म किया, अलकायदा के खिलाफ 9/11 के हमलों का बदला लेने के लिए बड़ा हमला किया, उस वक्त गुलबुद्दीन हिकमतयार ने भी अमेरिकी और नेटो के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया और फिर इनके जो लोग थे उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ इलाकों में हमले भी किए, कोशिश करते रहे, लेकिन इनकी फौजी जो ताकत है वो इतनी नहीं है और ये तालिबान के मुकाबले में बहुत कम है। ये इनकी जो पार्टी है हिज़्ब इस्लामी वो दावा करती है कि हिकमतयार पूरा अरसा अफगानिस्तान में एक खुफिया मुकाम पर रहे, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि ये अक्सर पाकिस्तान में रहे और पहले ईरान में भी रहे, यहाँ पे इनको पनाह मिली और ये खुद अफगानिस्तान की जंग में इन्होंने काफ़ी अरसे से हिस्सा नहीं लिया।
जी अच्छा, ये इनकी पोजीशन अभी क्या है? जैसे रूसी जब वहाँ पे इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में तो ये उनके खिलाफ थे, फिर जब तालिबान आ गया तो तालिबान के कारण इनको वहाँ से भागना पड़ा, और अभी क्या वो अफगानिस्तान सरकार के साथ हैं?
हाँ देखिए, इन्होंने तो अफगानिस्तान की सरकार के साथ ये एक पीस एग्रीमेंट किया है और इन्होंने ये वादा किया कि ये आइंदा जंग नहीं करेंगे। ये रूस के खिलाफ थे, उनसे जंग की, अमेरिका से जंग की। अभी भी इनका कहना था कि अमेरिकी और बाकी गैर मुल्की फौजों को अफगानिस्तान से निकलना चाहिए, लेकिन बिल आखिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और ये शर्त अपनी ख़त्म कर दी है। अभी तालिबान के साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत ही ख़राब हैं और इनकी कोशिश ये है कि जो इनकी अपनी पार्टी है हिज़्ब इस्लामी उसको इकट्ठा करें, जो मुख्तलिफ इसके फैक्शंस हैं उनको मिलाकर ये एक बड़ी सियासी जमात बनाएं और अफगानिस्तान की सियासत में कोई अहम करदार अदा करें।
जी, और 8 महीने पहले जो एग्रीमेंट वहाँ पर हुआ था, जो अशरफ गनी सरकार है उन्होंने करवाई है, गुलबुद्दीन हिकमतयार का लौटना क्या सरकार की जो पोजीशन है उसको मजबूत करता है?
देखें, ये 2 साल मुजाकरात हुए अफगान सरकार के और गुलबुद्दीन हिकमतयार के नुमाइंदों के लिए 8 महीने पहले एग्रीमेंट हुआ, उसके ऊपर बड़ी सुस्त रफ्तार से अमल दरामद हो रहा है और ये अफगान सरकार के मुखालिफ नहीं है, ये उसके साथ मिल गए हैं। अलबत्त तालिबान के ऊपर इन्होंने पिछले 2-3 दिन में काफ़ी सख्त क्रिटिसिज्म किया है और वो कह रहे हैं कि तालिबान की वजह से अमरीकी फ़ौज अभी तक अफगानिस्तान में है, तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में आइंदा जाकर ये अफगान सरकार के मजीद करीब हो जाएंगे और तालिबान के साथ इनके फासले बढ़ जाएंगे।
पेशावर से रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पिछले महीने 25 सीआरपीएफ जवानों की माओवादी हमले में मौत के बाद कथित रूप से बरामद एक संदिग्ध माओवादी के शव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। रायपुर से आलोक प्रकाश पुतुल की रिपोर्ट।
सुकमा जिले के बुर्कापाल में रहने वाले मड़कम बामन के पिता माड़वी दुला को पुलिस ने ताड़मेटला में 76 CRPF जवानों की हत्या के मामले में 2010 में गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में अदालत ने निर्दोष मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन इसी साल 11 मार्च को माओवादियों ने पुलिस का मुखबिर बताकर माड़वी दुला की हत्या कर दी। अब माड़वी दुला के बेटे मड़कम बामन को पुलिस ने कथित मुठभेड़ में मारे जाने की बात कही है। दंतेवाड़ा के IG पुलिस सुंदर राज का कहना है कि पिछले महीने CRPF के 25 जवान जिस बुर्कापाल इलाके में मारे गए थे, उसके पास से ही कथित रूप से माओवादियों द्वारा दफनाया गया एक शव बरामद किया गया है।
बॉडी जो मिला है तो घटना के 3 दिन बाद मिला है, तब जैसे कोई जानवर मतलब बॉडी को फिर नोचने के लिए कोशिश किया, तब पता चला मतलब कोई बॉडी है उधर, उसका रिकवर किया था, उसका PM रख करके फिर आगे का कार्रवाई किया था। उसमें लाइक अभी तक जितना भी एविडेंस है उसमें ये लगे थे उनको भी मतलब नक्सली ने जैसे क्योंकि जर्मनीशियो को भी वो लोग लेकर आए थे, संभवतः तो इस व्यक्ति को भी वो लोग घटना में मतलब एक स्ट्रेंथन के लिए करने के हिसाब से लेकर आया होगा।
लेकिन गाँव वालों का आरोप है कि बरामद किया गया शव बुर्कापाल गाँव के उप सरपंच माड़वी दुला के बेटे मड़कम बामन का है, जिसे CRPF की टीम घटना के अगले दिन गाँव से अपने साथ पकड़ कर ले गई थी। आरोप है कि बामन को बाद में फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया और माओवादियों द्वारा शव दफना देने की कहानी गढ़ दी गई। लेकिन दंतेवाड़ा के DIG पुलिस सुंदर राज पी इसे गलत बताते हैं।
उसके बाद लगातार सभी सीनियर ऑफिसर्स भी उधर ही कैंप कर रहे थे, सभी सीनियर विजिट भी कर रहे थे उधर लोकेशन में, गांव वालों से बात भी हुआ थे, मतलब गांव वालों से लगातार संपर्क में, मीडिया भी मतलब उस इलाके में लगातार घूम रहे थे, वैसा कोई बात होता तो तुरंत सबकी जानकारी में आ जाते थे।
दूसरी ओर बुर्कापाल पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर संकेत ठाकुर ने कहा है कि बुर्कापाल गांव के उपसरपंच माड़वी दुला के बेटे बामन का ही सवाल नहीं है, बुर्कापाल से बड़ी संख्या में पुरुष लापता हैं।
पुलिस उठा के ले गई तो 6 लोग के बारे में पुलिस ये बोल रही कि हमने इनको गिरफ्तार किया, बट बाकी लोग कहे कोई नहीं जानता। और उस गाँव में खाली बामन नहीं, कई लोग लापता है उस गाँव से, लापता उनकी कुछ खोज खबर ही नहीं। तो वामन की लाश भाई वो तो एकदम गलत हुई है कि माओवादी ने अगर उसके पिता को मारा तो माओवादी हो ही नहीं सकता, सवाल नहीं उठता।
छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला का कहना है कि पुलिस और माओवादियों के संघर्ष में स्थानीय आदिवासी मारे जा रहे हैं।
बस्तर के जो हालात हैं उसमें लगातार चाहे वो माओवादियों की तरफ से हिंसा हो या पुलिस की तरफ से हिंसा है, निर्दोष आदिवासी ही मारे जा रहे हैं। जब कोई बड़ी घटना होती तो उसके बाद कहीं ना कहीं निर्दोष आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाते हैं, और ये जो घटना है ये भी कहीं बहुत दुखद घटना है। और इस तरीके की जो घटना है इससे बस्तर के अंदर शांति स्थापित या शांति कायम करना काफ़ी मुश्किल काम होगा।
बस्तर में पुलिस के मुठभेड़ पर सवाल उठते रहे हैं। मामला अगर अदालतों तक पहुंच जाए तो फिर उसकी जांच की भी शुरुआत होती है, लेकिन ऐसे मामलों की जांच फाइलों में ही बरसों बरस चलती रहती है और फिर उसे भुला दिया जाता है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
भारत में मिग फाइटर विमानों की दुर्घटना की खबरें इतनी आम हो गई थीं कि मिग विमानों को फ्लाइंग कॉफिन या उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। ऐसे ही एक MiG-21 विमान को साल 2005 में फाइटर पायलट विंग कमांडर संजीत सिंह कायला उड़ा रहे थे, जो क्रैश हो गया। जांच में पाया गया कि विमान के निर्माण में कुछ गड़बड़ थी। विंग कमांडर कायला विमान उड़ाने के लिए फिट नहीं रहे, फिर वो अदालत गए और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 55 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दिल्ली से विस्तृत ब्यौरे के साथ विनीत खरे।
वर्ष 2005 में विंग कमांडर संजीत सिंह कायला MiG-21 विमान पर अभ्यास उड़ान पर थे, जब 1 मिनट के भीतर ही उनका विमान क्रैश हो गया। उनकी जान तो बच गई लेकिन रीढ़ की हड्डी में लगी चोट के कारण वो दोबारा विमान उड़ाने लायक नहीं रहे। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पाया कि विमान के उत्पादन में खराबी के कारण दुर्घटना हुई थी, हालांकि ये रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई। 12 साल बाद अदालत ने विमान उत्पादक HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत सरकार को आदेश दिया कि विंग कमांडर कायला को 55 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा, एक सैनिक और एक अफसर का सम्मान और गौरव जीवन के अधिकार की तरह ही है, उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल और स्टैंडर्ड उपकरण से वंचित रखना उनके जीवन और प्रतिष्ठा के अधिकार का हनन है। आदेश पर 43 वर्षीय विंग कमांडर कायला कहते हैं,
मैं बहुत खुश हूं कि माननीय जज ने इस चीज को पूरी तरह से समझा और अपने डिसीजन में एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन जो उन्होंने दिया है, जहाँ पे पहली बार ऐसे कुछ घटित चीज के ऊपर डिसीजन हुआ है वर्ल्ड ओवर में, और उन्होंने इसको बिल्कुल सही समझते हुए उन्होंने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं उससे साफ HAL की गलती का एहसास दिलाया गया है और बताया गया है कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसी चीज़ कभी किसी और को ना हो और इसके लिए इस तरह का डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी था।
HAL की ओर से इस बारे में कोई भी वक्तव्य देने से मना कर दिया गया। विंग कमांडर कायला दिसंबर 1991 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। 4 जनवरी 2005 का दिन विंग कमांडर कायला राजस्थान के नल एयरफोर्स स्टेशन में तैनात थे। अपने 3 साथी पायलटों के साथ वो नियमित अभ्यास के लिए उड़े ही थे कि उन्हें ऐसा लगा कि विमान बाईं ओर झुक रहा है। विमान के टेक ऑफ के कुछ ही सेकेंड्स बाद उसमें आग लग गई थी। कंट्रोल पैनल पर लगी बत्तियां जलने लगी। विमान को मोड़कर वापस रनवे पर लाने की कोशिश हुई, लेकिन पता चला कि विमान के सारे सिस्टम फेल हो गए हैं और मास्टर ब्लिंकर अलार्म तेजी से बज रहा है। जब विमान के बचने की उम्मीद नहीं होती तब ये अलार्म बजता है। वो कहते हैं,
कोशिश की मैंने कि इसको अब मैं लैंड कर सकूं, क्योंकि जहाज आग तो मैं देख सक रहा था अपने रियर व्यू मिरर में, बट लग रहा था कि अगर टाइम हुआ तो मैं इसको शायद लैंड कर जाऊंगा, लेकिन अगले ही 5 सेकंड के अंदर सब वार्निंग्स आ गई और जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि एक पोर्शन, बाद में पता चला कि एक पोर्शन पूरा जल चुका था, इसीलिए रोलिंग फोर्स इतना ज़्यादा आ रहा था, तो उसको सीधा करने के चक्कर में 1-2 सेकंड जब हुआ तभी एक विलेज सामने दिखाई दिया। मुझे पता था कि अगर अब मैंने जहाज छोड़ा तो विलेज में गिरेगा, तो फिर एकदम से ख्याल यही आया कि इसको मैं एटलीस्ट विलेज क्रॉस करा देता हूँ और फिर मैं एकदम कोशिश करूँगा इजेक्ट करने की। बस वो कर पाया, यही एक अपने आप में भगवान की देन समझता हूँ।
विंग कमांडर कायला के विमान से कूदने के 1.5 से 2 सेकंड बाद ही विमान क्रैश हो गया। वो बाल बाल बच गए। जमीन पर गिरते ही उन्हें पीठ में कड़ापन और दर्द महसूस हुआ। अगले 1.5 साल तक चली डॉक्टरी जांच और टेस्ट के बाद पाया गया कि उनके स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी है, और वर्ष 2007 में उन्हें बताया गया कि वो दोबारा विमान नहीं उड़ा पाएंगे।
तब मैं काफी दुखी था, इसमें कोई शक नहीं, पर डॉक्टर के साथ बात करके उन्होंने समझाया कि इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, और फ्लाइंग करके कुछ आप इंडियन एयरफोर्स को हेल्प नहीं कर पा रहे हो।
विंग कमांडर कायला के अनुसार उन्होंने सरकार से मुआवजा मांगा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। विंग कमांडर कायला के वकील भरत कुमार,
तो पिटीशन में उन्होंने ये बोला कि आप एंड में प्रेयर में, प्रेयर क्लॉज में हमने ये बोला कि अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जिनने गलत चीज़ करी है, इनका गलत काम हुआ है उस फैक्ट्री में, वो पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ आगे गाइडलाइंस भी कुछ फ्रेम हो ताकि उनके जो बाकी भाई हैं पायलट्स हैं एयरफोर्स के, उनको भी सेफ्टी मिले, उनको सहूलियत मिले, और वॉट एवर कंपनसेशन जो कोर्ट को ठीक लगे, जस्ट टू पिनलाइज HAL सो दैट ये एक डेटरेंट, जैसे कि आगे किसी चीज़ का ऐसा संभावना ना हो, ये एक्ट करें।
विंग कमांडर कायला ने याचिका में कहा था कि सुरक्षित परिस्थितियों में काम करना उनका हक है और उनके अधिकार का हनन हुआ है, और आखिरकार अदालत ने विंग कमांडर कायला के हक में फैसला दिया।
मैं होप कर सकता हूं कि अब जो मेरे आने वाली जनरेशन और जो फाइटर पायलट्स आएंगे उनके लिए सिर्फ उच्च क्वालिटी का स्टफ ही होगा जो इस तरह से कभी खराब ना हो और उनको सफ़र करना पड़े जैसे मैंने सफ़र किया।
विंग कमांडर कायला नासिक में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में इंस्ट्रक्टर हैं और सैन्य अफसरों को एयरफोर्स टैक्टिक्स सिखाते हैं। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
और अब समय है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं
वंदना।
वंदना, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना समय निकालने के लिए। चिट्ठियां एकदम शुरू कर दीजिए।
बिल्कुल, पहला जो पोस्ट कार्ड है असद अली साहब का है, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से।
रामपुर से, जी हाँ, बिल्कुल, पोस्ट कार्ड हमेशा लिखते हैं
जी। इन्होंने बात की है कि जो सुबह के प्रसारण में BBC संवाददाता वॉशिंगटन से डायरी पेश करते हैं वो इन्हें काफी अच्छी लगती है। ये ब्रजेश उपाध्याय की बात कर रहे हैं, जो खासकर अभी 100 दिन हुए।
मैं देख रहा हूँ कि लाल इंक से भी इन्होंने कुछ लिखा है, वो क्या क्या लिख रहे हैं?
लिखा है, कृपया हमारे पत्रों को भी आपके कार्यक्रम में शामिल करें, तो कृपा होगी।
जी बिल्कुल, शामिल होगी आपका चिट्ठी, और आप किसानों के बारे में, मौसम के बारे में जो टिप्पणी बीच बीच में करते रहते हो हम तक पहुंचती है, हम उन्हें कई बार इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं, लेकिन आज आपकी चिट्ठी शामिल हो गई।
जी, तो अगला पोस्ट कार्ड है नागेंद्र कुमार कुशवाहा का, पिपराही बाजार, जिला शिवहर, बिहार से। ये जो
ये
अलग
कई,
अलग रंगों में लिखते हैं,
स्याही से लिखते हैं। जी हाँ बिल्कुल।
जी जी, इन्होंने जिक्र किया है जो मधुलेमय पर विवेचना
फजल की विवेचना
की गई वो इनको अच्छी लगी, और इनकी गुजारिश ये है कि राम मनोहर लोहिया हैं उनके ऊपर भी जरूर सुनवाई।
समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया पर एक किसी तरह की गुजारिश हमारे पास आई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे विवेचना करने की, ये दोनों हमने नोट कर लिए हैं आपकी गुजारिशें आपकी चिट्ठियां। रेहान फजल जरूर कभी न कभी इन पर गौर फरमाएंगे और विवेचना करेंगे
जी। और अगला जो पत्र है वो है अभय कुमार निराला बक्सर से लिखा है इन्होंने और जिक्र किया है जो रिपोर्टें छत्तीसगढ़ से आ रही हैं। कहा है कि 32 दांतों के बीच में रहे आलोक पुतुल और सलमान रावी ने चारों तरफ से खासी अच्छी रिपोर्टें
सुनाई। रिपोर्टें की बिल्कुल 32 दांतों के बीच जीभ की ही हालत रिपोर्टर की होती है। एक तरफ माओवादी होते हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा बल होते हैं, अविश्वास का माहौल होता है। ऐसे में चिट्ठी लिखी है, एक आखिर में भी उन्होंने कुछ कहा है। अच्छा, इन्होंने लिखा है, माओ के हथियार आम जनता है न कि बंदूक। इस हिंसा प्रतिहिंसा के जिम्मेदार केंद्र एवं राज्य सरकार हैं। नक्सली कौन लोग हैं, आखिर क्यों, इसके लिए अध्ययनरत सामाजिक बातचीत की ज़रूरत है, न कि ऑपरेशन की। तो ये अभय कुमार निराला के विचार हैं, हमने अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिए हैं। अब कुछ ईमेल पर नजर इनायत कीजिए।
कुरुक्षेत्र से ईमेल भेजा है विकास शर्मा का और उन्होंने कहा कि दुनिया जहां बहुत ही सामयिक रहा मोहनलाल शर्मा ने जो पेश किया और कहा कि मुक्तदर खान तो हमेशा की तरह शानदार होते ही हैं और अपूर्व कृष्ण को सुनना बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, अपूर्व कृष्ण ने अब कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू किया है, बहुत लंदन से आए ही हैं। जी हाँ बिल्कुल, और अब तो आप फेसबुक पर लाइव हमारे रेडियो कार्यक्रम खासतौर पर शाम का कार्यक्रम सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हों तो फेसबुक लाइव जरूर सुनिए, दिन भर कार्यक्रम उसमें हम हमेशा 7:30 से 8 बजे तक प्रसारित करते
जी हैं। इसी से जुड़ी हुई बात जीशान नैयर ने लिखी है बेगूसराय से, जो लिखते रहते हैं कि अगर वीडियो भी साथ में होता तो बहुत बेहतर होता।
नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जीशान भाई, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि जब वीडियो चलता है और रिपोर्ट जब कोई चलती है उस वक्त सिर्फ आप प्रेजेंटर का चेहरा देखते हैं, कुछ हलचल नहीं होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो अनुभव थोड़ा सा उबालने वाला हो सकता है, नीरस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है। इसलिए हमने वीडियो की जगह सीधे आपको रेडियो प्रोग्राम फेसबुक पर मुहैया करवाया है
जी। ग्राम डुभा बक्सर से प्रणव उर्फ अमरीश ने ईमेल भेजा है, बोल रहे हैं कि तब से सुन रहा हूं जब मैं बच्चा था और उसके बाद घर से झूठ बोलकर एक बार रेडियो जो पैसे बचे उसका
रेडियो खरीद लिया वाह
और फिर अब इंटरनेट पे सुन लेते हैं। कहा है कि जब नाइट शिफ्ट होती है तो भी फिर वो सुबह का कार्यक्रम सुन लेते हैं। तो उनकी गुजारिश ये है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी
उनके बारे में कुछ कहा जाए, लिखा जाए, क्योंकि मैं इनकी चिट्ठी पढ़ रहा था, इन्होंने ये भी लिखा है कि जब ये प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे थे तो बीबीसी की वजह से इनको जनरल स्टडीज या सामान्य ज्ञान का अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ी।
जी, जी।
तो प्रणव उर्फ अमरेश, आप जरूर हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए और चिट्ठियां लिखते रहिए
जी। मोहम्मद शाहीन परवेज हैं चाईबासा झारखंड से, ये लिखते हैं कि आजकल मीडिया की निष्पक्षता पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में आप लोग जिस निष्पक्षता के साथ प्रस्तुति देते हैं वो सराहनीय है।
हमारे बहुत सारे श्रोता ये कई बार शिकायत करते हैं कि हमारी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हम उनसे यही कहते हैं कि आप बीबीसी पर भरोसा रखिए, आपको कतई बीबीसी किसी तरह से भी निराश नहीं करेगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जो तटस्थता है वो बरकरार रहे, लेकिन समाज में जो कुछ हो रहा है उसको उसी तरह से हम सामने रखें
जी। एक और ईमेल है, ये जलकौरा खगड़िया से है, मोहम्मद आफ्ताब आलम लिखते हैं कि प्रिय राजेश जोशी जी, आपने मेरी चिट्ठी शामिल की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विनती ये है कि बीबीसी न्यूज़ के अधिक से अधिक जो खबरें हैं उनको ऑडियो विकल्प के रूप में वेबसाइट पर रखें ताकि वो जो भी उनके पसंदीदा
कुछ तो हम ये करते हैं जी, कुछ तो हम करते हैं, लेकिन इसको और ज्यादा ऑडियो होता है या रेडियो के कार्यक्रम होते हैं वो वेबसाइट पर आएंगे। आप हमसे सहयोग बनाए रखें। तो चलते चलते पता बता दें
बिल्कुल,
अगर आपकी इजाजत हो
बिल्कुल
तो श्रोताओं पता नोट कीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003 और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और सभा समापन से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था के तहत कई देशों ने भारत से मानवाधिकारों से जुड़े मामलों पर सवाल किए हैं, जिनके जवाब भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी दे रहे हैं। उत्तरी चीन के एक बड़े हिस्से में धूल भरी आंधियां चली हैं, जिसकी वजह से कई शहरी इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों को घरों में ही रहने की चेतावनी दी गई है। अफगानिस्तान में वरिष्ठ कबायली नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार 2 दशक तक भूमिगत रहने के बाद काबुल लौट आए हैं। बीबीसी समाचार।
फिलहाल दिन भर में आज इतना ही। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।